فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. ایک فریق ہدایت پا گیا اور ایک فریق گمراہی چسپا ہو گئی. جب آئیں گے نا, جی دیکھیں جب کوئی شروع ہوتا نا فقرہ, تو یہ حالت نصبی میں نہیں ہوتا کوئی ورڈ, فریقن ہے نا, نصب ہے اس کے اوپر, تو ہونا چاہیے تھا فریقن. جب فریقن ہوا نا, فریقن سے فریقن ہوا, تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز اسے پہلے تھی جس کا ایفیکٹ اس کے اوپر آیا. تو تعودون اس سے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اس کا ایفیکٹ اس پہ آیا, تو یہ فریقن فریقن بنا. اوریجنل فارم میں یہ مرفوع ہی تھا. تو تعودون سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ضمیر کا اثر اس پہ ہوا کہ تم لوٹو گے کس طرح, کہ ایک فریق ہدایت پہ ہوگا اور ایک فریق پہ دلالت چسپاؤں گی. جب فرق بس یہ ہوگا, یعنی جب آپ دنیا میں پیدا ہوئے نا, تب تو کوئی ہدایت پہ کوئی گمراہی پہ ایسے کچھ نہیں تھا, اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا. لیکن جب وہ دوبارہ پیدا کرے گا نا, تو پھر دو گروپس ہوں گے, ایک ہدایت یافتہ اور ایک گمراہی والا. انہوں نے کیا کیا تھا, ان کا کیا قصور تھا؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ, انہوں نے شیطانوں کو دوست بنا لیا, اپنا سرپرست بنا لیا, ان کو اپنا سپورٹر بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ, اور ستم اس پہ یہ ہے, ایک تو شیطان کو دوست بنایا, شیطان کے ساتھی بن گئے, اور شیطان تو برائی کی طرف ہی لے کر جائے گا, وہ کبھی صحیح کام تو نہیں کرائے گا. جو شیطان کا ساتھ دیں گے اور اس کی بات کو سنیں گے, تو وہ کدھر لے کر جائے گا ان کو. تو انہوں نے اس کو اولیاء بنایا, اور سب سے بری بات کیا ہوئی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہیں, بالکل ہدایت پہ ہیں, ہم سے زیادہ ہدایت پہ کون ہے, ہمیں کیا پتہ نہیں ہے, ہم نے بھی سب پڑھا ہوا ہے, ہم بھی سب جانتے ہیں, ہمیں نہ زیادہ لیکچر دو. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے ہدایت پہ ہیں. اللہ اکبر. اور انسان جو یہ سمجھ لے نا کہ میرے اندر تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں, میں تو بالکل ٹھیک ہوں, اس کی اصلاح نہیں کبھی ہو سکتی. اصلاح صرف اس انسان کی ہو سکتی ہے جس کے اندر یہ کھٹکا رہے کہ میں غلط کر رہی ہوں, میں صحیح نہیں ہوں, دیکھو مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے. وہ ہی کبھی ہو سکتا ہے زندگی کے اندر, آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے. لیکن جس میں احساس ہی نہ ہو, جو اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا, چوری اور سینہ زوری والی بات ہے کہ ایک تو غلط کرتا ہے پھر اوپر سے کہتا ہے میں ٹھیک بھی ہوں. اور بہت سارے لوگ آج آپ کو ایسے ملیں گے جو غلط کر رہے ہیں, شیطانی کام کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم اچھے ہیں, ہماری نیت تو اچھی ہے نا. دیکھیں میری نیت کیا ہے, میری نیت میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. اگر وہ ہسبینڈ کے دوستوں کے ساتھ بھی فرینک ہوتی تو کہتی ہماری نیت تو اچھی ہے. اگر وہ بے حیائی کا لباس پہنتی تو کہتی ہماری اصل میں تو آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے نا, ہماری آنکھوں کا تو پردہ ہے, اصل میں تو یہ ہونا چاہیے. اور بہت دیکھی ہیں حجاب والیاں, وہ تو اس طرح کرتی ہیں, وہ تو ڈیٹ پہ جاتی ہیں, وہ تو فلاں کرتی ہیں. اور دیکھو یعنی ہم کتنے اچھے ہیں کہ ہم حجاب کے بغیر ہی, دیکھو ہم کتنے نیک پارسا ہیں. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں پاک ہوں, اللہ ہے جو پاک کرنے والا ہے. ہم اپنے منہ میاں مٹھو نہ منو, ہم بہت پاک صاف ہیں, ہمارے تو دل دھلے ہوئے, ہماری تو نظریں ایسی, ہم تو ایسے پاک اور فرشتے ہیں. نہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. اور قرآن کے اندر تو کافروں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی آنکھوں کے آگے پردے ہیں. یہ کہتے ہیں نظر کا پردہ ہونا چاہیے, تو کیا فرق رہا؟ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے اگر نظروں کا ہی پردہ ہو گیا تو. اسی لیے اندھے ہو گئے, کچھ نظر نہیں آتا. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے بنی آدم اپنی زینت کو اختیار کرو. کہاں؟ عند کل مسجد. اور مسجد جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا, ظرف زمان بھی ہے, ظرف مکان بھی ہے, یعنی نماز کی جگہ پہ بھی, یعنی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جب جاتے ہو تب بھی خذوا زینتکم, اور نماز کے وقت بھی. اب پہلے نماز کی جگہ کو دیکھ لیتے ہیں, یعنی جب آپ نماز کی جگہ پہ کھڑے ہونے لگیں, جب آپ مسجد جاتے ہیں, چاہے آپ نے گھر میں کوئی اپنی نماز کی ایک جگہ مخصوص کی بھی ہے, وہاں پہ کھڑے ہونے لگتے ہیں, یا مرد مسجد جا رہے ہیں. عورتوں کو نہیں کہا گیا کہ اپنی زینت پورا سنگھار کر لینا, پرفیوم لگا لینا, پھر مسجد جانا. عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ, मगर मर्दों को है कि जीनत इख्तियार करें, यानी अपने आप को ब्यूटिफाई करें, खुशबू लगाएं, अच्छा लिबास पहने, गुसल कर सकते हैं गुसल करें, पर ना वुजू तो करते ही है ना। यानी अल्लाह ताला चाहते हैं कि जब आप अल्लाह के सामने खड़े हो नमाज में तो आप साफ सुथरे हो, आपने जीनत का एहतमाम किया हो, आपने अच्छे कपड़े पहने हो। ऐसा नहीं हो कोई जैसे कपड़ों में बैठे हुए थे, नाइट सूट में बैठे थे, उसी तरह मस्जिद चलेगा, ये सही नहीं है। या जैसे कहीं से खेल वेल के आए और उसके बाद वैसे ही पसीनों में शराबूर और वैसे ही कैजुअल खेलों वाले कपड़े पहने में और उससे मस्जिद में खड़े हो गए। और आप देखें तो अक्सर ऐसा होता है कि चाहे हम लोग जो घर में पढ़ने वाली हैं नमाज औरतें भी, तो हमने भी अगर कहीं जाना होता है ना, तो हम पहले अपने वो मेले को चले जो घर के कपड़े पहने होते, कहती पहले नमाज पढ़ लूँ फिर एक दफ़ा तैयार होंगी, यानी मेरे वो वाले कपड़े जो इस्त्री वाले हैं वो ख़राब ना हो जाए ना नमाज में। हालांकि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा हकदार है इस बात का कि जब हम उसके आगे खड़े हों तो हम जीनत के साथ, यानी अपने अच्छे लिबास के साथ, अच्छी खुशबू के साथ, आप घर में तो लगा सकती हैं, खुशबू भी लगाएं घर में, आप अच्छे तरीके के साथ अपनी मिसवाक की हो, इसीलिए मिसवाक को ऑप्शनल कहा गया लेकिन बहुत इसकी ताकीद की गई, ये सब जीनत है। तो ऐसा ना करें कि रिंकल्ड कपड़े और गंदे कपड़े और प्याज लहसुन की बू वाले कपड़े, वो तो नमाज के लिए, और जब लोगों को मिलने जाना है तो बहुत अच्छा ड्रेसअप होके हम जाते हैं। अल्लाह से मुलाकात है ना नमाज, तो अल्लाह से मुलाकात करने के लिए क्या हमें अच्छी तरह ड्रेसअप नहीं होना चाहिए? चलो आप 5 दफ़ा बदल बदल के कपड़े नहीं रख सकते, तो कम अज़ कम एक दुपट्टा ही हो जो, या एक चादर जो है जिसमें आप नमाज पढ़ती हैं वो भी कोई खुशबू लगी हुई हो, साफ सुथरी हो, नीट एंड क्लीन के साथ आप उस वक्त खड़ी हो। मगर ये तो ना करें कि जैसे तैसे ही कपड़े हैं वैसे ही खड़े हो गए, ये नहीं कि उससे नमाज नहीं होगी, नमाज हो जाएगी, मगर ये अदब का लिहाज है। आप देखें कोई अपने बॉस से भी मिलने जाता है ना तो 10 दफ़ा कपड़ों को देखता है। आप किसी शादी पे लोगों के सामने ही जाना, देख लो लोग हमारे लिए कितनी बड़ी अहमियत रखते हैं, हम कहते तो बहुत इतनी बातें हमसे ना जितनी मर्जी करा ले, हमें तो अल्लाह से मोहब्बत ही बड़ी है, हमें तो पता नहीं क्या है, ज़मीन आसमान के कलाबे मिला लें, या तो हम इतना बोला ही ना करें ना, तो लेकिन बातें हमारी बहुत बड़ी बड़ी, मगर जिस वक्त रियलिटी आती है ना, प्रैक्टिकल लाइफ आती है, तो देखें हमने किसी को मिलने जाना हो, किसी ने हमारे घर आना हो, हमने किसी दावत पे जाना हो, शादी पे जाना हो, हम इतनी दफ़ा शीशा देखते हैं, हम इतने अपने आप को यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ पे भी, कपड़ों में भी सिलवट ना हो, कोई निशान ना हो, कोई ऐसा ना हो, कहीं स्मेल ना आ रही हो, कहीं ये ना हो, लेकिन अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए कोई कपड़ों का अहतमाम नहीं, कोई इस चीज़ की परवाह नहीं, फटा हुआ पहना हुआ है, पजामा ऐसा पहना हुआ है, स्लॉपी लग रहे हैं, कुछ भी हैं, बस खड़े हो गए। क्यों ये इतना ज़रूरी है, क्यों जीनत इख्तियार करने का कहा गया मस्जिद के लिए, नमाज के वक्त या नमाज की जगह पे खड़े होने के लिए? क्यों? इसलिए कि हमारे जो हमने पहना होता है ना उसका भी हमारे पर इफेक्ट होता है। आप खुद मुझे बताएं, आप अब क्लास लेने के लिए बैठी हैं, अगर आप अपने पजामों में नाइट सूट में बैठ गई हैं, ना आपने कंघी की हुई है, ना आपने वुजू किया हुआ है, कोई मुंह धोया नहीं है सुबह से, बस बैठ गए पढ़ने के लिए, तो पढ़ना ही है ना, तो कोई बात नहीं उसमें, और आप उठें, आपने गुसल किया, आपने कंघी की, आपने इस्त्री वाले साफ सुथरे, चलो इस्त्री वाले नहीं भी थे, आपने साफ सुथरे कपड़े पहने, चेंज किया, वो नाइट सूट से आप दूसरे में आए, मुझे बताएं क्या तबीयत के ऊपर फर्क पड़ता है कि नहीं? तबीयत हशाश बशाश होती है कि नहीं? इंसान ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकता है कि नहीं? क्यों बच्चों को कहते हैं आप स्कूल भेजते हुए, क्यों उनको यूनिफॉर्म साफ सुथरा पहना के भेजती हैं? क्यों नहीं नाइट सूट में ही भेज दिया करें, पढ़ने ही जाना है ना, क्या फर्क पड़ता है इससे? क्यों उनकी कंघियां करती हैं, क्यों उनको संवारती हैं, क्यों उनको उनका फ्रेश करके भेजती हैं? फर्क पड़ता है इससे, क्वालिटी ऑफ वर्क में फर्क पड़ता है। मर्द सुबह जाने लगते हैं, वो नहा धो के घरों से जाते हैं, पूरे अपने सूटेड बूटेड होके जाते हैं, क्यों? तो सभी ऐसे काम कर लिया करें, लेकिन वो अब ये नमाज की तो कोई अहमियत ही नहीं हमारे नजदीक, तो ऐसे ही खड़े हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है, पढ़नी ही है ना नमाज, कौन सा कबूलियत से रह जानी है। तो नहीं, इसमें भी जितना एहतमाम कर सकें आप करें। आपको कोई मेकअप करने को नहीं कह रहा, हालांकि जो शादियों ब्याहों के लिए हम जब जाते हैं तो घंटों तो मेकअप में ही लग जाते हैं, तो इसमें मेकअप की नहीं ज़रूरत, सिर्फ आप मिसवाक कर लें या टूथब्रश कर लें, आपने थोड़ा कुछ चेंज कर लिया, आपने अपनी कंघी कर ली, तो उसके बाद जो आप नमाज़ पढ़ेंगे ना, ज़ाहिर है वुज़ू किया हुआ आपने, बहुत अच्छा आपको फील होगा। तो खुजू जीना तक को मिंदा कुल्ली मस्जिद, अब कहा गया आपको कि आप जीनत इख्तियार करें हर मस्जिद से पहले, हर मस्जिद के लिए, तो और पूरी बनी आदम को ये कहा गया। इसका मतलब है ये जो हमारे अंदर कॉन्सेप्ट है ना, बस इस तरह जोगी टाइप बन के रहो, गंदे कपड़े, बदबू आ रही है, कपड़ों का कोई ध्यान नहीं है, बाल बिखरे, कहते हैं बड़े पहुंचे हुए हैं जी, बड़े पहुंचे हुए हैं, जिनका तो ताल्लुक ही अल्लाह के साथ बहुत है। वो कहां कह रहा है कुरान ये आपको? वो चाहता है कि आप अच्छी तरह ड्रेस अप भी हो, आप साफ सुथरे भी नजर आए, आप बिल्कुल चाको चौबंद भी नजर आए। ये थोड़ी कहता है कि कुछ परवाह ही ना हो अपनी। हसन ने अपने लिए एक लिबास रखा हुआ था नमाज के लिए, उसको पहन के वो नमाज पढ़ते थे, खास एक लिबास था उनका। तो यहां पे भी लिबास की बात सबसे पहले आ जाती है ना। वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, पूरी मेडिकल साइंसेस के अंदर आ गई है। कुलू खाओ और पियो, लेकिन इसराफ ना करो। अगर सिर्फ इस बात के ऊपर हम फोकस करके और अपनी डाइट को रखेंगे ना, तो आप देखेंगे आधी से ज़्यादा बीमारियां हमें नहीं लगेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है हमारा, देखें एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि बिल्कुल ही खाने पीने के अंदर आज़ादी है, हम जो मर्ज़ी खाएं जो मर्ज़ी पिएं, बस खाना पीना ज़िंदगी बनाई हुई है। दूसरी तरफ एक ये भी है कि कुछ नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, सब चीज़ों को छोड़ दो, तो यही बस हमारा तकवा है, यही हमारी नेकी है। नहीं ना, देखें आपको अच्छा लिबास पहनने से मना किया गया, आपको बताया गया कि लिबास में जीनत है ना, आपको अच्छा खाने पीने से मना किया गया, बल्कि आदमियों को तो कहा गया कि तुम मस्जिद के लिए बल्कि ज़्यादा लिबास बेहतर पहन के जाओ। अल्लाह ताला एक आदमी ने अच्छा लिबास पहना, उसने कहा या रसूलल्लाह क्या मतलब ये, क्या तकब्बुर में तो नहीं आता? तो आपने फरमाया नहीं, ये तकब्बुर नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला तो खुद जमील है और जमाल को पसंद करता है, खुद अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को अल्लाह ताला पसंद करता है। तो तुम उस अगर आप अपने कोई कपड़े भी पहनते हैं खूबसूरती के लिए, कोई हरज नहीं है इसमें। इसी तरह खाने पीने में कोई हरज नहीं है, आप खाएं और पिए। और अच्छा, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कभी हमें ऐसी नहीं मिसाल मिलती कि आपके आप सामने अच्छा खाना रखा गया हो तो आपने कहा कि मैंने नहीं खाना ये खाना, क्योंकि मेरे लिए ये खाना सही नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं अच्छे खाने नहीं खा सकता। ऐसी कहीं नहीं आया, जब अच्छा मिला तो अच्छा भी खा लिया, जब नहीं मिला तो नहीं खाया। अगर आपको मुयस्सर है हलाल से तो आप खा सकते हैं। इसराफ करने से मना किया गया, खाने से नहीं मना किया गया। खाओ पियो, अल्लाह ताला ने तो कहा खाने पीने की चीज़ें तुम्हारे लिए बनाई हैं अल्लाह ने, कभी कहीं बताया तरकारी उगाई है, कहीं फल बनाए हैं, कहीं अल्लाह ताला ने जानवर हम तुम्हारे लिए हलाल किए हैं, खाने के लिए ही किए हैं ना। अल्लाह ने मना करना होता तो अल्लाह ताला इनको वैसे ही हराम कर देता। लेकिन जो चीज़ मना है वो इसराफ है, इसराफ हद से बढ़ जाना, और हद से बढ़ जाने की बहुत सारी सूरतें हैं। एक चीज़ नहीं मैं आपको बता सकती कि आपने ये नहीं करना तो आप इसराफ से बच जाएंगे, नहीं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसराफ में। इसराफ में यह है कि आप हराम खाना शुरू कर दें, इसराफ में यह है कि जितनी भूख है उससे भी ज्यादा खा लें, इतना खा लिया कि अब पेट ऐसे फूल गया, सांस लेने का भी, वो कहते हैं बाज़ लोग के हाय अब सांस लेने की भी जगह नहीं रही, सांस भी नहीं आती, इतना खा लेते हैं। तो ये इसराफ है, या अपने आप को भूखा मारना शुरू कर दें, अब है खाना लेकिन खुद को भूखा कर रहे हैं, इतना कम खा रहे हैं जिससे कमजोरी इतनी लाहक हो गई है कि अब अपने फ्राइज भी नहीं अंजाम दिए जा रहे। ये सारी चीजें देखें, इसराफ हर चीज में ही बुरा है। आप चाहे कपड़े पहने उसमें भी इसराफ बुरा है क्योंकि वो तकवा के खिलाफ है, चाहे आप खाना पीना करें तो उसमें भी इसराफ बुरा है। अगर आप अपने खाने पीने के ऊपर ही इतना खर्चा कर देंगे तो आप कहाँ किसी भूखे के भूख को मिटाने के लिए कुछ दे सकेंगे। जब इंसान को खुद भूख लगती है ना, तो तब उसको किसी की भूख का भी एहसास होता है। जो एक के ऊपर एक ही खाता रहे तो उसका क्या है, जब कभी अपने आप को भूख लगने ही ना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको भी इसराफ को कहते हैं कि जब किसी चीज को जी चाहे तो उसको जरूर ही पूरा कर ले, कि बस मैंने ये मेरा दिल चाह रहा है, अब वो चाहे 100 मील दूर पे वो चीज है, वहां पे चल पड़े हम खाने के लिए, क्योंकि बस हमारी ख्वाहिश हो गई है कि हमने ये खाना है। तो इसराफ, हद से ही बढ़ जाना, ओवर ईट कर लेना, हराम खा लेना, या हदूद का ख्याल ना रखना, हराम है या हलाल है कुछ भी खा लिया, हमें बस अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, ये सब इसराफ में आती है। या खाने पे इतना ज्यादा स्पेंड करना, खानों को जाया कर देना, तो ये सब इसराफ है। अब इसराफ से मना किया गया और बता दिया गया कि सबसे पहली ये बात कि खाना पीना जरूरत है, आप इसको पूरा करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। नंबर टू बात, जब शरीयत किसी चीज को हराम कर दे तो खुद उसको हलाल ना करें, ये भी इसराफ हो गया। और इसी तरह जब जिन चीजों को हराम नहीं किया गया, कोई दलील नहीं है उनके हराम होने की, उनको खुद ही ना हराम करके बैठ जाया करेंगे, नहीं बस हम तो नहीं ये खाते क्योंकि हम बड़े नेक हैं ना, तो इसलिए हम नहीं खाते, खुद ही हराम किया हुआ। दोनों ही चीजें गलत हैं, हलाल को हराम करना भी गलत है, हराम को हलाल करना भी। दूसरी चौथी बात ये कि पेट भर जाने के बाद भी खाते ही जाना, ये भी इसराफ है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इंसान के लिए इतना ही काफी है कि वो दो लुकमे उसको मिल जाए जिससे उसकी कमर सीधी रहे, वो उसके लिए काफी है। अब ऐसा भी ना खाओ कि इंसान का पेट फटने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा किसी को देखा, उसने आपके सामने डकार ली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी डकार को रोक के रखो, क्योंकि जो दुनिया में बहुत पेट भर के खाते हैं वो क्यामत के दिन बहुत ज्यादा भूखे होंगे। यही बात वाकई इंसान पकड़ ले तो कितनी वो है कि अगर मैं यहाँ पे इतना ओवर ईट करूंगी तो क्यामत के दिन उतनी ही भूख होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के पेट से बढ़ के किसी बर्तन को भरना बुरा नहीं, यानी पेट भी एक बर्तन है ना, इसको जब वो ठूस ठूस के भर लेता है तो इससे बुरा कोई बर्तन नहीं है। इब्ने आदम के लिए चंद लुकमे काफी हैं जिससे उसकी कमर सीधी रहे, जो मैं अभी बता रही थी। और अगर उसने ज्यादा खाना ही है तो पेट के तहाई हिस्से खाने के लिए रखे, तहाई हिस्सा 1/3 पानी के लिए रखे और 1/3 सांस लेने के लिए रखे। ये तिर्मिजी की हदीस है। तो इससे हमें काफी कुछ आदाब पता चलते हैं कि खाने पीने के भी आदाब हमें बताए गए। ये भी हमें बताया गया आपने इसराफ नहीं करना, इसराफ के अंदर सारी हर किस्म की ज्यादती आ जाती है, हद से बढ़ना आ जाता है। थोड़े से आदाब के हवाले से ये भी बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसके घर में खैर की कसरत करे, वो खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोए और कुल्ली कर ले, तो इससे खैर आएगी घर में, खैर की कसरत होगी। और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया जाए, बिस्मिल्लाह भूल जाए तो बिस्मिल्लाह ही अव्वल हुआ आखिर हुआ पढ़ लिया जाए। तो बहुत सारे आदाब हमें सिखाए गए हैं। तो इसराफ ना बस करो, अल्लाह को इसराफ नहीं है पसंद। ये जो हम इतने इतने खाने बना लेते हैं, कितनी सारी डिशेस, वो भी एक इसराफ हो जाता है। जब हम टू मच स्पेंडिंग करते हैं खाने के ऊपर, वो भी इसराफ में आ जाता है। जब हम खाना फेंकते हैं, अल्लाह की नेमतों को ज़ाया करते हैं, वो भी एक इसराफ में आ जाता है। और देखें ये भी इसराफ है, मैंने आपको बताया खाने पीना मना नहीं, कपड़े अच्छे पहनना मना नहीं, लेकिन जिस वक़्त इंसान का ध्यान हर वक़्त कपड़ों में ही लगा रहे या खानों में ही लगा रहे ना, कि कभी वो रेसिपी देख रही हैं, कभी प्रोग्राम देख रही हैं, रेसिपियाँ नोट हो रही हैं, रिवाइंड कर करके लिखा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या मुश्किल हो गई, उसके बाद खाने जो पकने लगे हैं, उसके बाजारों में जाके कितनी किस्म की उसकी ग्रोसरी है जो करके लानी है, फिर उसके बाद उसको बनाने में 4 घंटे लगने, 4 घंटे जिंदगी के एक खाना बनाने में लगे जिसको खाने में 10 मिनट भी नहीं लगते, और एंड ऑफ द डे क्या आपके हाथ में आया, हाँ बड़ा जबरदस्त मजे का खाना बनाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दिन में 2 दफ़ा खाना खा रही हैं, तो फरमाया है आयशा क्या तुम्हें यह पसंद है कि तुम्हारा शुगर सिर्फ खाना ही रह जाए, यानी 2 दफ़ा खा रही थी, और हमारे तो दिन में 5 दफ़ा होते हैं, चाय का भी तो बीच में होता है ना स्नैक, स्नैक ब्रेक वो भी हमने लेनी थी, नाश्ता भी करना है, स्नैक भी खाना है, लंच भी खाना है, फिर शाम की चाय भी है, फिर डिनर भी है, ठूसते ही जाते हैं अपने अंदर। तो फिर उसके बाद यही है जो बीमारियां आज हम देखते हैं। किसी ईसाई तबीब ने पूछा था, वो हारून रशीद के ज़माने में हुआ करता था, उसने अली बिन हुसैन से पूछा था, बिन वाकिद से, कि तुम्हारी किताब में कुरान में कोई तिब का कुछ नहीं है? तो उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह ताला ने सारे तिब को इस एक आयत के अंदर रख दिया, कुलू वशरबु वला तुसरिफु। और वाकई आप देखें कम खाने से बहुत सारी बीमारियों से इंसान बच जाता है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला हद से बढ़ने वाले को पसंद नहीं करता। हद से बढ़ना चाहे किसी भी चीज़ में हो, सिर्फ खाने पीने में नहीं, कपड़ों में भी अगर आप हद से बढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि कपड़े पहने लेकिन उसके बाद अगर आप कपड़े को और बना रहे हैं लेकिन पिछले को सदका कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। अगर आप कपड़े पहन के आजी में हैं और आपका मकसद ये है कि कोई किसी को दीन की बात सिखाने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ, वो तो बात सुनेगा ही नहीं अगर बिल्कुल ही फकीरों वाले कपड़े पहन के चले गए। आपके पास अच्छे कपड़े हैं, पहनिए उनको, आप अच्छा लिबास अपने हलाल रिस्क में से बनाते हैं, कोई मसला नहीं। मगर आप बस कपड़ों के पीछे ही पड़ जाना, हर वक्त कपड़ों के डिजाइनों को डिस्कस किया जा रहा है, जिस मजलिस में बैठ रहे हैं आजकल क्या फैशन है, वो टेलर की बातें हो रही हैं, उस टेलर ने ऐसे कर दिया, भागी जा रही हैं दिन में कितनी फोन कर रही हैं उसको, फिर रोज ही टेलर के चक्कर लग रहे हैं, ये लेस फलां जगह से, वो दुपट्टा फलां जगह से, पता नहीं क्या कितने मसाइल अपने। तो ये क्या है, इसराफ ही तो है इसराफ। किसी चीज में भी अल्लाह को मुसरिफ नहीं पसंद, किसी चीज में भी नहीं, ला युहिब्बुल मुसरिफीन। आज तो मेरे ख्याल सारी औरतें कह रही होंगी कि हमारी तो इतनी शामत आ गई भाई, जो सारी चीजें जिसमें हम है ना वो उसी का डिस्कशन हो रही, कहीं कपड़े हैं तो कहीं खाना पीना। फिर हम कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, क्या से हम पढ़ें, कैसे हम करें, टाइम कैसे होगा, हमारी तो मशगूलियत ही है, हमारे इंटरेस्ट ही यही है, खा पी लिया उसके बाद पहनने की फिक्रें हैं कि अब क्या पहनना। वो अभी कहीं जाना होता नहीं, किसी शादी का कार्ड आता पहले ये डिस्कशन शुरू रहती, पहनना क्या है भाई, कोई जगह पे हमने कहीं पहुंचना है, कहीं जाना है, कोई इवेंट है, सबसे पहले ये बता खाने में क्या होगा, खा पी लो, कोई अल्लाह मना नहीं करता, खाना पीने की चीजें तुम्हारे लिए ही हैं, लिबास भी तुम्हारे लिए अल्लाह ने उतारा है, लेकिन ये क्या हुआ कि जिंदगी इन चीजों को बना लिया, ये जरूरत है, ये मकसद नहीं है इस जिंदगी का जैसे हमने बनाया हुआ। फिर टाइम निकलेगा कहां से बताएं। फिर कुकिंग की क्लासेस लेंगे और कपड़ों की डिजाइनिंग ही देखेंगे, फिर कुरान कौन पढ़ने आएगा। कुल मन हरम ज़ीनत अल्लाह अल्लती अखरज लिइबादिही, कह दीजिए कि किसने हराम की है जीनत अल्लाह की, यानी अल्लाह की जीनत का मतलब क्या, ये कपड़े ये लिबास जो सारे इसको जीनत कहा गया, कि इसको किसने हराम किया है कि नहीं ये नहीं पहनना ये नहीं करना। जैसे कुछ लोग इतने अपने आप को समझते हैं ना कि हम बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं, बस सिर्फ सफेद लिबास पहने के, और मर्दों के लिए तो पसंद किया गया, औरतों को नहीं तो नहीं कहा गया कि आप सफेद लिबास पहने, आपके लिए बस यही है, औरतें तो जो भी कलर पहन सकती हैं, लेकिन हमारे दिमागों में ना एक कॉन्सेप्ट है कि जो दर्स देने वाली होंगी या जो बड़ी कोई नेक होंगी ना, बस उन्होंने वाइट लिबास पहनना होगा, और ऐसे बस तस्बीह पकड़ी होगी और ऐसे कर रही होंगी, बस वो हैं जो सही वाली दीन वाली हैं, ये कहाँ पे है। इसलिए तो फिर लोग दीन से भागते हैं, हमारे दिमागों में ये कॉन्सेप्ट है, हमें तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुलू वशरबू भी फरमाया, वला तुसरिफू, हद सिर्फ एक है, हमें ये भी फरमाया तुम लिबास भी पहनो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने खूबसूरती के लिए रखा तुम्हारा जिस्म छुपाने के लिए, लेकिन लिबास व तकवा साथ जरूर रखना। ये कहां पे बताया गया कि ना तुम कपड़े कोई बनाओ, ना तुमने कोई अच्छा खाना पीना है, ये हराम है सारी चीजें, सब कुछ दे के बस दो जोड़ों के अंदर जिंदगी गुजारो तुम। हालांकि तुम्हारे पास इतना कुछ है, सब कुछ अल्लाह ताला ने फरावानी दी भी है रिस्क की, लेकिन कपड़ा ना कोई बनाना। ओके, ये हमें अब ये फख्र है कि हम दो कपड़ों में ही जिंदगी गुजारते हैं, देखो हम कितने आलीशान नेक लोग हैं। ऐसा नहीं है। मन हराम जीनत अल्लाह, अल्लाह की जीनत को यानी इन इन चीजों को किसने हराम किया है, किसने कहा ये हराम है? क्योंकि अहले अरब ने भी कुछ चीजों को हराम कर लिया था ना, मैंने आपको बताया। तो आज भी बाज लोग तकवा समझ के इन चीजों को हराम कर लेते हैं, जो अल्लाह ने निकाली है अपने बंदों के लिए, मोमिनों के लिए निकाली है, ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने ये पैदा की है। ईमान वाले सबसे ज्यादा हकदार हैं कि वो इनको इस्तेमाल करें। वह तो ये बात ही मेरा रिस्क, और पाकीजा चीजें रिस्क में से, वो भी अल्लाह ने ईमान वालों के लिए निकाली है। तो इनको किसने हराम कर दिया कि पाकीजा कोई खाना नहीं आप खा सकते? अच्छा, वो किसने उसको बहीरा साहिबा उनको हराम कर दिया? ताला के अल्लाह ताला ने तो नहीं हराम किया। तो अच्छी प्योर चीजों को, तय्यब चीजों को किसने हराम किया? बाज लोग इसको भी नापसंद करते हैं कि हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे। ये एक किसी का बताया गया कि वो उन्होंने सेब लटकाया हुआ था अपने सामने, को पीर साहब थे या क्या थे, तो उन्होंने कहा कि वो लटका रहता था और वो हिलता रहता था। तो किसी ने पूछा, भाई आपने क्यों लटकाया हुआ? उन्होंने कहा, इसलिए लटकाया हुआ क्योंकि एक दिन मेरा दिल चाहा बहुत कि मैं सेब खाऊं, लेकिन मैंने अपने नफ्स को कहा कि मैंने नहीं तुझे देना, तो सामने लटका दिया और ये लटका हिलता रहता है, लेकिन मैंने बस खाना नहीं है इसको। तो ऐसी कोई ममानियत नहीं, किसने हराम की है? जायज हद में रहते हुए आप इख्तियार कर सकते हैं, अल्लाह ताला की दीवी पाकीजा चीजों को रिस्क में से खा सकते हैं, जो अल्लाह ने पहनने के लिए दिया ना वो भी पहन सकते हैं। कुल ही अलिल्लतीन आमनू फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में तो कुल ही अलिल्लतीन आमनू फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में भी ईमान वालों के लिए है ये, लेकिन दुनिया की जिंदगी में काफिर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने काफरों को भी दिया खाना पीना रहना सहना, बल्कि बहुत जगहों पे शायद उनके पास ज्यादा ही होगा। तो दुनिया में तो वो भी इस्तेमाल करते हैं, ईमान वाले भी इस्तेमाल करते हैं। ईमान वालों को हराम नहीं है यहां पे इस्तेमाल करना, लेकिन खालिसतन यौमुल क़ियामा, ईमान वालों के लिए खालिसतन उनके लिए होंगी क़ियामत के दिन। दुनिया में मोमिन काफिर सब खाते पीते पहनते हैं, लेकिन यहां पे भी हक ईमान वालों का है, हक ज्यादा ईमान वालों का है। यहां पे भी अल्लाह ने उनके लिए बनाई, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वमन कफर फउमती हु कलीलन, जब वो सूरह बकरा में आता है, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अल्लाह ताला सिर्फ ईमान वालों को फल देना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं काफरों को भी मैं दूंगा, लेकिन उनके लिए ये दुनिया का कलील सा फायदा है, क्योंकि यहां भी मिलेगा आगे नहीं मिलेगा उनको, मगर ईमान वालों को तो उनको ही सिर्फ मिलेगा। यहां पे सबको मिल रहा है, वहां पे सिर्फ उनको मिलेगा। तो क्या समझ आई बात, कि खुद ही ना कह दिया करें ये हराम वो हराम वो हराम, क्योंकि ये अल्लाह ताला की अथॉरिटी है, इसमें मुदाखलत करना दुरुस्त नहीं है। और इसको बड़ी दीनदारी ना समझे कि हम बहुत दीनदार हैं क्योंकि हमने ये सारी चीजें अपने पर हराम कर ली हैं, ठीक है। ये भी नहीं दुरुस्त है कि आपके पास वुसत है और आपके पास आप कपड़े अच्छे ले सकती हैं, लेकिन आप गंद मंद कपड़ों के अंदर फटे पुरानों में रहती हैं, मांग तांग के पहनती हैं, क्योंकि आपको अंदर तकवा बहुत है। नहीं, ये तकवा की कोई बात नहीं, बल्कि जो अल्लाह ने आपको नेमत दी है, अल्लाह ताला चाहता है कि उसका इजहार हो इंसान के ऊपर। एक सहाबी आए थे जिन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पूछा कि आपके पास क्या वुसत है? इन्होंने कहा है हमारे पास इतना है, बहुत दिया हुआ है अल्लाह का। तो आपने फरमाया अल्लाह ताला फिर चाहता है कि उसका इजहार हो तुम्हारे ऊपर। ऐसा भी ना रखो कि पैसे को तो मुट्ठी में रखा हुआ, कुछ खर्च ही नहीं करना, ठीक है। हम देखते हैं सल्फ सालेहीन में बहुत से हैं जिनको अल्लाह ताला ने माली वसत भी अता फरमाई थी, वो कीमती लिबास भी पहन लिया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जैसे मैंने आपको बताया कि पहना था। तो इसमें कुछ ऐसा हराम करने की बात नहीं है, बस मैंने आपको क्या बताया किस चीज से बचना है, شو آف سے، فخر و غرور سے، اپنی بڑائی کے احساس سے کہ میں بڑی ہو گئی یہ پہن کے، یا میں کھا کے، یا ہمارے گھر میں تو یہ پکتا ہے، یا ہم تو یہ برانڈ کے پہنتے ہیں، یہ حرام ہے. صحیح ہے. اور اس میں تکلف بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسے جو آسانی سے مل جائے ٹھیک ہے، اتنے زندگی کے ٹائم اور گھنٹے دن انہی کاموں میں گزار دیں، یہ بھی پھر اسراف ہو جاتا ہے. تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اصل میں تو اطاعت گزار اپنے بندوں کے لیے، مومنوں کے لیے پیدا کی ہیں، دوسروں کو ان کی وجہ سے وہ بھی کھا پی رہے ہیں پھر، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے نا، دارالجزا نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ سب کو ہی مل رہا ہے، مگر وہاں پہ جا کے نہیں سب کو پھر ملے گا. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اور راحتیں اس خاص کیفیت کے ساتھ کہ وہ آخرت میں وبال جان نہ بنے، صرف فرما بردار مومنین کا حصہ ہیں، اور کفار اور فاجروں کے لیے گو دنیا میں نعمتیں ان کو بھی ملتی ہیں بلکہ زیادہ ملتی ہیں، مگر ان کے لیے نعمتیں آخرت میں ان کے لیے وبال جان بن جائیں گی اور عذاب بن جائیں گی، مومنوں کے لیے عذاب نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. اللہ تعالیٰ اس طرح تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی آیات کو، لیکن وہ سمجھتے وہی لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو واقعی، جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں قرآن پاک میں یہ باتیں بتا دی گئیں لیکن سمجھ ہر ایک کو نہیں آتی، جو اس کا علم لیتا ہے اسی کو سمجھ آتی ہے. قل انما حرم ربی الفواحش. اب پہلے بات آئی نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، تو کس نے حرام کی ہے؟ اللہ نے تو نہیں حرام کی، پھر اللہ نے کیا حرام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے یہ، قل انما حرم ربی الفواحش. اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تمہارے رب نے کیا حرام کیا؟ فواحش کو، فاحشہ کو، بے حیائی کے کاموں کو، بے حیائی کی باتوں کو، بے حیائی کی چیزوں کو. ما ظہر منہا و ما بطن، جو ظاہر بھی ہیں اور جو باطنی بھی ہیں، چھپی بھی ہیں کھلی، سب کو. دیکھیں چھپی بھی چیزیں بعض دفعہ انسان ان کو تو بے حیائی سمجھ ہی لیتا ہے اگر، لیکن جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اتنی کامن ہو جاتی ہیں کہ ان کو کوئی بے حیائی پھر سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ معاشرے کا ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے، وہ معاشرے میں ایک ایکسیپٹیبل چیز بن جاتی ہے، اس لیے اس کو حرام نہیں سمجھا جاتا. اصلاً بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر ایک چیز عریانی بھی ہے، یعنی ننگا پن. اب وہ ننگا پن اتنا ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ وہ تو پورا ہی اتار چکے ہیں، ہم اتنا بھی نہیں اتار سکتے، ہم تو تھوڑا سا ہی اتار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فحاشی کو حرام کیا ہے، اب اس سے زیادہ ورڈ کیا بڑا ہو سکتا ہے کہ یہ حرام ہے. پھر ہم فحاشی کی چیزوں کو کہتے ہیں کدھر ہے قرآن کے اندر لکھا ہوا کہ یہ حرام ہے اور ایسا نہیں کر سکتے، صرف یہ آیت ہی دکھا دینا تو اس میں جتنی فحاشی، کیونکہ دیکھیں فحاشی کی ڈیفینیشن اگر اس زمانے میں لی جائے تو کوئی فحاشی کے اڈے تھے، کوئی ایک ایسے طوائفیں ہوتی تھیں، انہوں نے جھنڈے لگائے ہوتے تھے اور وہ ان کے گھروں کے اندر بدکاری کے کام ہوتے تھے، ایک وہ بات تھی، یا اور کوئی لمیٹڈ فحاشی کی کوئی چیزیں ہوتی ہوں گی. آج جتنی فحاشی ہے اور جتنی فحاشی کی اویلیبلٹی ہے اور جس قسم سے ہے، وہ تو کبھی پہلے وقت کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کیا کیا فحاشی ہے جو آج عام ہے اور جس کو اتنی زیادہ اویلیبل ہے کہ جس کو پہنچنے کے لیے کسی کو کوئی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک فون پہ، ایک فون کی اسکرین کے اوپر ساری فحاشی سامنے آ جاتی. پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، دیکھنی بھی ہے تو دیکھ سکتے ہیں، انفارمیشن لینی ہے وہ بھی مل جائے گی، سب کچھ ہے. تو وہ اس زمانے میں فحاشی لمیٹڈ تھی، آج فحاشی ہر طرف پھیل گئی، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک شیطان کا جو ایجنڈا تھا نا وہ پورا ہو گیا. اور فحاشی کے خلاف مل کے جہاد کرنا ضروری ہے، یہ آسان نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ آپ کو بھی پاگل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بہت ہی ایکسٹریمسٹ ہیں، بہت ہی پاگل ہیں لوگ، अल्लाह ताला ने तो जो जाहिरी और बातनी सारी इंक्लूड कर दी, अब रह कौन सी गई। अगर जाहिर में भी लोग औरतें अपने सत्तर को खोल रही हैं तो ये भी फहाशी है, ये भी हराम है। वो थोड़ा खोल रही हैं या ज्यादा खोल रही हैं, फहाशी है वो। अगर शादियों पे जो नाच गाने की मजलिसें हो रही हैं वो चाहे कितनी भी कॉमन हो जाए और आप उनको कोई भी नाम दे दें, वो फहाशी ही रहेगी और वो हराम ही रहेगी। वो चूंकि सब कर रहे हैं अब इस वक्त, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेप्टेबल हो गई अल्लाह के यहां, वो फहाशी ही है। जो हंस हंस के बातें करना गैर महरमों के साथ, वो बेहयाई है उसके, वो हया वाली नहीं बन जाएगी क्योंकि आज आप बहुत मॉडर्न हो गए। इसी तरह मर्द औरतें एक जगह बैठे में एक जगह गपशप कर रहे हैं, वो महरम भी नहीं है, औरतें भी पूरी अपनी पूरे अपने बनाव सिंगार के साथ हैं, तो ये फहाशी रहेगी। जब नाचेंगी औरतें तो ये फहाशी रहेगी, जब आप बेहयाई के गाने सुनेंगे तो फहाशी रहेगी। आज तो ये हाल हो गया कि बेटियों के साथ बाप हैं और गाड़ियों के अंदर बेहयाई के गाने चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहां हया चली गई मर्दों में, एक ही ड्राइंग रूम में बैठे हुए और सब एक स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जहां पे एक औरत और मर्द लचक रहे, नाच रहे, गा रहे हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता बाप को कि मेरी बेटियां भी साथ बैठी हैं। हाँ, बहुत ही कोई सीन आ जाए तो जरा सा फॉरवर्ड करते हैं बस, जो कि बाद में बच्चियां खुद अकेले में फिर देख सकती हैं। ये आज हमारे हाल हो गए जिनके कुरान में लिखा हुआ हराम है। हराम का लफ्ज देख लें आप यहाँ पे लिखा हुआ। अभी मैं अपनी खुद डेफिनेशन नहीं कर रही कि फहाशी की, फहाशी उन सारे गुनाहों को जो बेहयाई के हैं, जो बदकारी के हैं और जो सारे रास्ते बदकारी की तरफ ले जाते हैं, उन सब को फोहश चीज कहा जाता है, फहाशी कहा जाता है। असल में जो वहशी जानवर है ना, उनसे उनकी वाली जो सिफात हैं वो ही फहाशी की हैं। वो जैसे यानी वहशी जानवर के लिए आता है फवाहिश, तो इंसान भी जानवर की उस पर आ जाता है सतह पे। और आज तो जानवर को भी पीछे छोड़ दिया, जानवर भी मेल मेल के साथ कोई गलत नहीं करता, फीमेल फीमेल के साथ नहीं होती। आज इंसान ने तो जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया वल्गैरिटी में, कि मर्द मर्द से अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा, औरतें औरतों से कर रही। तो अल्लाह ताला ने तो साफ साफ ये बातें बता दी। कौन है जो कहता है कि हमें समझ नहीं आती, या कुरान में कहां लिखा हुआ है? एक लफ्ज कह के पूरी दुनिया आपकी समोदी, आप हर तरफ देख लें, चाहे बिलबोर्ड्स आप देख लें, जो इतने बड़े बड़े इश्तिहार हैं और उनके ऊपर फहाशी की तस्वीरें हैं और औरतों के ऐसे ऐसे पोज हैं कि वो मर्द तो देखें तो देखते ही रह जाए। वो आपकी नाचती थरकती औरतें हैं जो टीवी की स्क्रीन पे हो जाए या फोन की स्क्रीन पे हो जाए, नंग धड़ंग है हर तरफ। क्या और होती है फहाशी? क्या हम इसको फहाशी नहीं समझते? तो हमारी डेफिनेशन में कुछ कमी है। फिर फहाशी वो होती है जिसका जो भी बेहयाई है, लेकिन हमने अपनी हया की जो डेफिनेशन है ना, उसको इतना वसी कर लिया कि उसकी तो कोई बाउंड्रीज ही नहीं रह गई। हर चीज ही जायज है, इसमें क्या हरज है, लो इसमें क्या बात है, फिर क्या हो गया, अब इतना भी क्या हो गया, जब गैर महरों में से चैटिंग हो रही है। अब जाहिर है मैं इस फील्ड में हूं तो बहुत सारी चीजें मुझे पता चलती हैं, तो शायद दूसरे लोगों को नहीं पता चलती हूं कि कितनी मैरिड कपल्स की आगे गलत दोस्तियां, गलत जगहों के ऊपर उन्होंने ताल्लुक बनाए हुए, ये सब फहाशी ही तो है। और ये तोहफा है इन चीजों का, जो हम ऐसे ही नहीं आज यहां तक पहुंचे, इसके पीछे पूरी कहानी है, इसके पीछे पूरा शैतान का एक स्टेप बाय स्टेप लेके इंसान को चलने का एक ट्रैक था, जिसके बाद आज यहां पहुंचे हैं कि कभी सोचा नहीं जा सकता था कि कोई शादीशुदा औरत किसी और के साथ कोई अफेयर में इन्वॉल्व हो। लेकिन यहां तक कैसे पहुंचे, आप देखें कौन है पीछे इसके, कौन चाहता है फहाशी आम हो? शैतान, इसलिए ही तो उसने इनको नंगा किया था, फहाशी चाहता है वो। अब वो चाहे पोल्ट्री में आप गानों की सूरत में कह ले, आप मजलिसों की सूरत में, कभी कभी ऐसे लतीफे हैं, ऐसी बातें हैं जिनके अंदर फहाशी, ऐसे नावल हैं, ऐसी न्यूज हैं जिनमें लोग चस्के ले लेके उन पूरी न्यूज को पढ़ते हैं, क्योंकि अब उनको बड़ा मजा आ रहा है कि वो न्यूज ही ऐसी है, उसके अंदर मिर्च मसाला है। अब वो तो उसको कहते भी हैं कि मिर्च मसाला इस फिल्म में या इस ड्रामे में होना चाहिए। आपके ड्रामे उठा के देख लें, उनके लिबास उठा के देख लें, किधर जाएं बताएं, हम तो एक चारों तरफ से फहाशी में घिरे हुए। आप टीवी लगाएं, चाहे आप इंटरनेट देखें, चाहे आप कोई जगह पे चले जाएं, क्या है वहां, हर तरफ फहाशी है जिसको अल्लाह ताला ने हराम कर दिया कि जाहिर ही हो या बात नहीं हो। मत सोचें कि ये खुल के सामने है सबके और सब इसको जायज समझते हैं तो ये ठीक है, नहीं। अब मैं और किस किस चीज का नाम लूं, आप सबको पता है कि कहां कहां क्या क्या फहाशियां हो रही हैं, घरों ना घर महफूज रहे हैं ना बाहर, ऑफिसेज में देख लें वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जाहिर है बेपर्द औरतें होंगी और इस कदर ऐसे कपड़े पहन के और ऐसे ऐसे मेकअप करके होंगी, वहां पे मर्दों की कमजोरी है जाहिर है, वहां पे फितने पैदा होंगे, वहां पे फहाशियों के दरवाजे खुलेंगे, जहां पे इतनी इजाजत होगी कि औरतें फ्रैंक हो रही हैं आदमी के दोस्तों के साथ, कल को वो आदमी टेक्स्ट भी कर देगा प्राइवेट में, कल को वो आदमी फोन भी कर देगा कि जब उसका शौहर घर पे नहीं होगा इसके साथ चिट चैट करने के लिए। तो यंग को क्या कहना, आजकल तो और शादीशुदा वालों में भी बिगाड़ आ गया। तो ये चीजें याद रखें, एक ऐसे एक रात की बात नहीं होती, एक दिन की बात नहीं होती, ये एक सफर है, ये एक पूरा एक सिलसिला है जो चलता गया और यहां तक पहुंच गया। जब हम हर चीज को कहते हैं ना, फिर क्या हो गया, तो क्या हो गया, कजन ही है ना, तो क्या हो गया, फ्रेंड ही है ना, तो मेरे तो बस वैसे ही फ्रेंड है ना, क्लास फेलो है ना, कोलीग है ना, तो क्या हो गया, करते करते वो तो क्या हो गया नहीं रहता, फिर वो बात बहुत बढ़ जाती है। तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आंख भी जिना करती है और उसका जिना देखना है, कान भी जिना करते हैं और उनको जिना सुनना है, हाथ भी जिना करते हैं उनका जिना पकड़ना है, शर्मगाह तो उसको वेरीफाई करती है, बस उसकी तस्दीक करती है, क्योंकि पहले आंख देखती है, आंख उठती है, हया खत्म होती है, कान सुनते हैं चीजों को, हया खत्म होती है। ऐसी मजलिसों से दूर रहें जहां पे ऐसी बातें होती हैं, जहां पे ऐसे जोक्स होते हैं, जहां पे ऐसी डिस्कशंस होती हैं, या जहां पे ऐसा माहौल होता है जिसमें बेहयाई होती है। आप तो चूज कर सकते हैं ना अपनी मजलिसें, क्यों ऐसी मजलिसों में बैठते हैं जहां पे आपके लिए फितना बन जाए ये चीजें, आपके शौहर औरों को देखें और आपकी तरफ देखें। तो ऐसी मजलिसों से दूर रहें, ऐसी कंपनी से दूर रहें, ऐसे लोगों को दोस्त ना बनाएं जो फहाशी की तरफ ले जाते हैं, जो हाथ पकड़ के फहाशी पे ले जाएं। कहते ना कि देखो जो शैतान है वो तो वसवसा सिर्फ डाल सकता है ना, लेकिन जो बुरा दोस्त है वो तो साथ लेके जाता है फहाशी की जगह पे, चलो आओ उस मूवी के लिए, चलो आओ उस क्लब में, चलो आओ उस जगह पे, वो तो हाथ पकड़ के लेके जाता है, राइड भी देता है। तो फहाशी का हर दरवाजा बंद करें। कुछ बच्चियों ने मुझे मतलब मेरे साथ शेयर किया, वो अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, जो बेचारा जिस फितने में पड़ा होता वो वही जानता है कि वो पोर्नोग्राफी के में इतनी एडिक्ट हो गए कि आज वो उसके बगैर नहीं रह सकते, इट्स एडिक्शन, वो अगर नहीं देखें तो उनको कुछ होने लगता है, वो अपने आप को कितना रोकते हैं, गिल्ट भी उनके अंदर होता है, रोते भी हैं, जाहिर है मुझे ईमेल कर रही हैं जो बच्चियां, तो वो जाहिर है उनको अंदर गिल्ट है, नहीं करना चाहती लेकिन एडिक्ट हो चुके हैं, अब वो बार बार वहां जाते हैं और वही चीजें देखते हैं। कैसे देखो फहाशी, आज वो हो गई फहाशी कि ऐसे रिसाले, ऐसे इंटरनेट पे चीजें जो कि हर एक को एक्सेसिबल है, कुछ पे नहीं करना पड़ता उसके लिए। कोई जमाने थे कोई लोगों को कहीं जाना पड़ता था, कोई 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 तवायफों के अड्डों पे जाते थे, कोई लोग उनको पैसे देने पड़ते थे, कोई कंगला तो वैसे ही नहीं अफोर्ड कर सकता। आज क्या है, आज बच्चे बच्चे के हाथ में वो फहाशी की जहां तक फहाशी तक पहुंच सकते हैं उसका टूल मौजूद है। अल्लाह हमें माफ फरमाए, अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर ना हर औरत के अंदर याद रखें एक अलार्म सिस्टम रखा है कि उसको पता चल जाता है कि ये चीज़ सही नहीं हो रही, कोई उसको कैसी नज़र से देखे या उससे किसी तरह बात करे, लेकिन फिर भी अगर हम अपने गार्ड्स ही डाउन रखें और हमें ऐसे संभोली बन के रहें तो फिर खुद ही नुकसान है ना। वल इथ्म, और इस्म, इस्म को भी अल्लाह ने हराम कर दिया। इस्म कौन सा गुनाह होता है जो हुकूकुल्लाह से मुतालिक हो, जिसमें इंसान दूसरे को नहीं नुकसान पहुंचा रहा अपने आप को पहुंचा रहा है। आसिमा उस ऊंटनी को कहते हैं जो तेज चल सकती है लेकिन जानबूझ के नहीं तेज चलती, यानी वो कर सकता है वो काम लेकिन वो नहीं करता, वो उस गुनाह से बच सकता है लेकिन नहीं बचता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाह वो है, इस्म वो है जब इंसान उसको करता है तो उसको ये होता है कि किसी को पता ना चल जाए, वो इस्म है, वो दिल में खटकने लगे और लोगों के सामने उसके आ जाने से तुम डरो तो ये इस्म है। समझ आई? आज बहुत से लोग कहते ना तो क्या हो गया, मैं जो मर्जी करूं मेरी जिंदगी है, मैं अपने आप को हर्ट करूं, मैं खुदकुशी करूं, मैं नमाज ना पढ़ूं, तुम्हें क्या है इसका, तुम्हें तो नहीं ना कोई नुकसान, मैं किस लोगों को तो नहीं कुछ कह रही, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन बस अल्लाह के हुकूक में कमी कर रहे हैं, तो उसको कुछ समझते नहीं है और कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये नहीं पता कि ये मेरा जिस्म नहीं है, ये तो अल्लाह ने अमानत दी भी है भाई, थोड़ी देर के लिए आपको दिया इसीलिए ये जिस्म आपकी शिकायतें लगाएगा क़यामत के दिन खड़ा होके, क्योंकि ये अगर आपका होता तो आपके खिलाफ कभी ना बोलता, ये तो अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने थोड़े दिन दिया कि आप इसको इस्तेमाल कर लें उसके रास्ते में, फिर वापस देना है, एक दिन रूह निकल जानी है, ये जिस्म खोखला होकर पड़ा होगा, तो ये मेरा जिस्म नहीं है, ये जिस्म अल्लाह का दिया हुआ है, ये अमानत है मेरे पास। तो इस्म भी अलाउड नहीं है कि हम ये ना समझे मैं किसी का तो नहीं बुरा कर रही, मैं किसी को तो नहीं कुछ कह रही, अपने साथ ही कर रही हूं, नहीं अपने साथ भी नहीं कर सकते कोई ज्यादती। वल बगी अभी गैर हक, और बगी ज्यादती को, ना हक ज्यादती करना, बगी कहते हैं वो गुनाह जिसमें आप दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, मसलन किसी को धोखा देना, किसी के साथ ज्यादती करना, किसी का हक मार लेना, किसी पे जुल्म करना, किसी को गालियां देना, किसी के मारपीट कर देना, थप्पड़ मार देना, किसी की हकीर जाना, उसको बेइज्जत कर देना, ये सारे बगी में आते हैं। बेगैर हक, हक नहीं था, उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। एक होता है ना हक के साथ करना, हक के साथ करना क्या होगा, किसी ने किसी को थप्पड़ मारा उतना उसने उसको मार दिया, किसी ने किसी की आंख फोड़ी उसकी भी आंख फोड़ी गई, किसी ने किसी का दांत तोड़ा उसका भी, इस्लाम में किसास है, उसकी जान ली उसकी भी जान ली गई, तो तब ये ज्यादती नहीं होगी। लेकिन ज्यादती बेगैर हक, ना हक तुम ज्यादती कर रहे, उसने नहीं तुम्हारा कुछ बिगाड़ा लेकिन तुम उसका बिगाड़, तुम उसके साथ या उसने तुम्हारे साथ एक जरा सी कोई बात की तुमने उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया, तो वो फिर बगी बगैर हक हो गई। वह अंतुशरीकु बिल्ला ही मालम यू नजिल भी सुल्ताना, और ये कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ ये भी अल्लाह ने हराम किया है। अब यहां पे खाने पीने की चीजों का नहीं ताल्लुक यहां पे आ रहा, ये आपको माशरती जिंदगी की बातें बताई जा रही हैं कि कौन कौन सी जगह पे आप ने बच के रहना है, क्योंकि ये चीजें हराम है, हुकूकुल्लाह में कमी करना हराम है, हुकूकुल इबाद में। देख लें अब एक बगी बेगैर हक कह के ना कितनी सारी चीजें इसमें समो गई, झूठ किसी साथ बोल दिया, उसकी गिबत कर दी, दोनों को लड़ा दिया, लगाई बुझाई कर दी, झगड़ा किसी का, अब ये सारी चीजें बगिया बेगैर हक में आई, नमाज छोड़ दी, रोजा छोड़ दिया, जकात नहीं देते, ये सारा इस्म में आ गया कि ना पूरी पूरी दुनिया एक एक लफ्ज में है, ऐसे नहीं, ये बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव है जो कुरान की लैंग्वेज है, एक लफ्ज में बहुत कुछ है। अब जो बैठ के वैसे देख रहा होता ना वो कहता है कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ ये पे है, कहाँ लिखा है, उस लफ्ज के अंदर सारी डिटेल है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि देखें हम नमाज रोजा इतना सब कुछ करते हैं, इतनी इबादत गुजार हैं, अब लोगों के साथ वो जो मर्जी करते रहें, लोगों के साथ बुरा भला करें, घर में सास हैं या किसी की बहू हैं तो वो उनके साथ कोई जुल्म कर रही हैं, वो उसको जायज समझते हैं। अब बगी बगैर हक भी तो अगली बात कही गई ना, उसके ऊपर भी तवज्जो दें कि हुकूकुल्लाह भी हैं, हुकूकुल इबाद भी हैं। कोई दुनिया में लोग ऐसे देखेंगे बस सारा उनका जोर ही हुकूकुल इबाद पे है, और हकुकुल्ला को छोड़ा हुआ है। कोई ऐसे देखेंगे बस हकुकुल्ले ही करते जा रहे हैं, वो उनको परवाह ही नहीं है हकुकुल्ले बात की। कई कहते हैं ये अलग ही एक मंतक है, कोई कहते हैं हकुकुल्ले बात बस पूरी करें, अल्लाह अपने हकूक खुद ही माफ कर देगा। बंदों के साथ ना कुछ करें, अपने हक अल्लाह ने माफ कर देने, बंदों के नहीं माफ करने। ये कैसी बात आपने की, सबसे बड़ा हक तो मेरे अल्लाह का है, बंदों का तो बाद में हक आता है, तुम पे सबसे बड़ा हक किसका है? उसके हक में कमी करके सोचते हो, वो तो यानी कोई बड़ी बात ही नहीं है। हाँ, बंदों के जरूर हकूक पूरे करते रहो, तो ऐसा नहीं है। सब का अपना अपना हक है और उसके मुताबिक ही उसका हक देना चाहिए जो अल्लाह ताला ने रखा। और कि तुम शिर्क करो अल्लाह के साथ, ये भी हराम है। मालूम ही ना सिर्फ सुल्ताना, कायनात में कहीं इसकी दलील ही नहीं। ला के दिखाओ कोई एविडेंस जो बताती हो कि एक से ज्यादा खुदा है, कोई अल्लाह का शरीक है इसका, कोई ला के दिखाओ प्रूफ। वह अंतकूल माला तालम, ये भी हराम है कि तुम अल्लाह ताला के ऊपर वो बातें कहो जो तुम्हें इल्म नहीं है, तुम जानते भी नहीं हो, अल्लाह ने नहीं कही भी। और वो बातें अल्लाह अल्लाह ताला ने तो ये कहा है, खुद ही मसाइल घड़ घड़ के, खुद ही हदीसें घड़ घड़ के, खुद ही अकीदे घड़ घड़ के लोगों में फैला दिए जाते हैं। अब ये देख लें व्हाट्सएप पे क्या खिदमत जारी है आजकल, हर वक्त कुछ ना कुछ कहानियां, किस्से, पता नहीं क्या क्या झूठी सच्ची, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया, ये कर दिया, ये ऐसे क्या, उस कुछ भी उसकी बेस ही नहीं होती। फिर खुद ही फतवे देते जाना, नहीं जी कुरान में तो ये है, नहीं जी हदीस में तो वो कहीं पे भी नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, मुंह से अल्लाह ताला का नाम लेके या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेके कोई बात कह देना बहुत बड़ी बात होती है। इसको लाइट नहीं समझना चाहिए कि आपके पास नॉलेज ना हो और आप अल्लाह ताला के ऊपर बातें कहते जाएं, अल्लाह ने ये हराम किया है, ये तो हराम है भाई। अब वो कहीं भी नहीं हराम, या किसी चीज को हलाल कर देना। तो अब आप ये जो लिस्ट है ना, इसको देखें, ये कितनी चीज़ें हैं, पांच चीज़ें हैं ना, इनमें देखें हर कोई अपना अपना मुहासबा करें कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, क्योंकि ये सारी हराम की लिस्ट है। कहीं मैं इस्म पे तो नहीं इन्वॉल्व, कहीं मैं बगी में तो नहीं इन्वॉल्व, कहीं मैं शिर्क करने वाली तो नहीं, कहीं मैंने अपनी ज़ुबान को खुला तो नहीं छोड़ा हुआ कि जो मर्जी बात मेरे जहन के अंदर आती है तो अल्लाह के ऊपर नाम लगा के और वो कह देती हूँ, क्योंकि अपनी बात को ज़रा स्ट्रॉन्ग करना होता है। कहीं फहाशी में तो नहीं कहीं हूँ, बेहयाई की कोई चीज़ें तो नहीं हैं, चाहे खुली हैं चाहे किसी को भी नहीं पता है, बहुत हिडन है, सीक्रेट है, लेकिन वो बेहयाई है, ये हराम है, याद रखिए हराम। और फिर भी अगर हम अपने आप को समझें कि मैं तो कितनी नेक हूं, तो फिर क्या है नेकी अगर हम हराम में इन्वॉल्व हैं, इसमें से निकलना है। वली कुल्ली उम्मत इन अजल, हर उम्मत के लिए एक मुकर्रा वक्त है, एक मोहलत है। फैजा अजल हमला यस्ताखरुना सात अमला यस्तकदीम, जैसे इंसानों की मौत का एक वक्त है ना मुकर्र, इसी तरह कौमें जो हैं उनके उरूज व जवाल होते रहते हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, कभी अपने गुनाहों की वजह से और कभी अल्लाह ताला उनको मोहलत देता है कि वो अपनी पूरी तबई ज़िंदगी गुजारें और ख़त्म हो जाएं। कई कई कौमें तारीख में, ये बच्चों की आप साइंस की बुक अगर देखें, एक दफ़ा मैं देख रही थी, साइंस की नहीं हिस्ट्री की देख रही थी, तो उसके अंदर कितने नेशंस का आया कि ये भी एक थे, ये भी एक थे। मैं हैरान हो गई कि देखो कितनी कितनी दुनिया में लोग आए, उन्होंने इतनी तरक्कियां की हुई थी, फिर उनकी तरक्कियों की दास्तानें, फलां नेशन इतने अरसे से इतने अरसे तक रहा, फिर वो कहाँ चले गए, उनके तो नामो निशान भी मिट गए। आज जब हम कहीं किताबों में उनका कोई थोड़ा बहुत जिक्र पढ़ लेते हैं, बस कहाँ है वो लोग कोई पता ही नहीं। हर उम्मत का भी एक मुकर्रर वक्त है, एक टाइम है, लेकिन जब वो सरकशी करती है ना, तो अल्लाह ताला जितनी मर्जी उसने मादी तरक्कियां की हों, अल्लाह ताला उनको ख़त्म कर देता है। और फिर एक सेकेंड साह की भी ताखीर नहीं होती, और ना ही एक ज्यादा सेकंड उनको दिया जाता है, ना ही एक सेकंड पहले किया जाता है, ना ही एक सेकंड बाद होता है, ना देरी ना जल्दी। इससे नहीं इंसान कितनी बड़ी ये रियलिटी को समझ सकता कि देखो यहां पे कोई चीज पायदार नहीं है, फना है, कौमें भी फना हो जाती हैं, उनकी भी मोहलत ख़त्म हो जाती है, उनका टाइम ख़त्म हो जाता है। आज जो रूज पे हैं बहुत, वो ये ना समझे कि हमेशा ऐसे रहेंगे। या बनी आदम, ए बनी आदम, अब भी दोबारा पूरे बनी आदम को खिताब है, इम्मा याती अन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुसून अलैकुम आयाती, अगर तुम्हारे पास या जब भी तुम्हारे पास रसूल आए जो बयान करते हो, अलैकुम आयाती, तुम पर मेरी आयतें। इसका मतलब रसूलों का काम क्या होता है और हर जमाने में रसूलों ने क्या किया, अल्लाह की आयात को बयान किया। फमन तकवा व असलाह, फिर उनकी बात सुन के जो तकवा इख्तियार करेगा और जो अपनी इसलाह कर लेगा, अपने आप को सही कर लेगा, फला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उनके लिए कोई खौफ नहीं होगा, कोई रंज नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। याद रखें खौफ हमेशा फ्यूचर का होता है और गम पास्ट का लग जाता है इंसान को, कहते नहीं इन्हीं मेरे इन्हीं गमों ने मुझे खा लिया, तो वो माजी के होते हैं। तो क्या है सलूशन इसका, अगर हम चाहते हैं हमें खौफ ना हो, हम चाहते हैं हमें गम ना हो, तो हम क्या करें? इसका नुस्खा है यहाँ पे कि जो रसूल तालीमात लेकर आए हैं, जो अल्लाह की अहकामात लेकर आए हैं, उनको समझें और अपनी इसलाह करें, अपने अंदर तकवा पैदा करें। आपको पता चलता है ना ये चीज़, अब देखें मिसाल के तौर पे हमने ये आयत नंबर 33 पढ़ी कि अल्लाह ने ये चीज़ें हराम की, अब आपको पता चल गया, अब आपने अपना मुहासबा किया, अल्लाह का डर रखते हुए अपना हिसाब किताब किया और अपनी इसलाह में लग गए कि नहीं नहीं ये चीज़ मैं करती हूँ, ये मुझे छोड़नी है, ये गलत बात है, मुझे ये नहीं करनी, देखो अल्लाह ने हराम कर दिया ये। तो जिसने अपनी इसलाह कर दी ली और खुदा खौफी के साथ रहा कि मेरे अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, और जिन चीज़ों से अल्लाह राजी होते मैंने वो करनी है, तो वो हैं जिनको फिर कोई खौफ और गम नहीं होगा क़यामत के दिन जब वो आएंगे, ना उनको खौफ होगा कि अब हमारे साथ क्या होता है, ना उनको गम होगा कि हाय दुनिया के अंदर हम ये कर लेते और वो कर लेते। वल्लदीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को, ये आयतें ऐसे ही पढ़ पढ़ के रखने की चीज़ नहीं है, इनके ऊपर ईमान लाना ज़रूरी, यानी इनको मान लें। जिसने अल्लाह की आयत को झुटला दिया ना, मैं नहीं मानता, अस्तकबरू अन्हा, ये तकबर ही है कि हक सामने आ जाए, उसको मानने की जगह बजाय इंसान कहे कि मैं नहीं मानूंगा, ये तकब्बुर है, झुटलाना तकब्बुर है। तो तकब्बुर करना ये भी है कि इंसान इग्नोर कर दे उनको और उनको कहे कि पता है हमें सब, बस छोड़ो, ये भी एक इस्तिकबार है कि हम यानी बड़ी चीज है, और ये भी एक झुटलाना है कि आपको पता भी है लेकिन आप मान के नहीं दे रहे, करना हमने वही है जो हमारी मर्जी है, पता है हमें सब कुछ, पढ़ रहा है हमें भी बड़ा इस्लाम हमने पढ़ा हुआ। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसे नहीं लगता कि ये सारी बातें हमारी आज की हैं? हम कितनी मजलिसों में ये एरोगेंस देखते हैं अल्लाह की आयात के मुकाबले में, जब इंसान अपनी अक्ल अपनी समझ कोई सब कुछ समझने शुरू हो जाए और अल्लाह की आयात को कुछ खातिर में ही ना लाए, कुछ भी ना समझे। उलाएक असहाब उन्नार हम फीहा खालिदून, अल्लाह की आयात को झुटलाना मामूली बात नहीं है, एक आयत हो या पूरा कुरान हो एक ही बात है, एक आयत को झुटला देना भी पूरे कुरान को झुटला देना। फमन अदरम मिम्मन इफ्तरा अल्लाह कदिबन व कज़्ज़ब बिआयाती, इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पे झूठ घड़े और अल्लाह की आयात को झुटलाए, अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ताला ने वो फरमाया, अल्लाह ने खुद बना ले। देखें मैं और आप जिनकी कोई हैसियत नहीं, कोई हस्ती नहीं, हमारे जैसों के ऊपर भी अगर कोई झूठ बोल दे ना कि ये तो पैसे मांग रहे हैं या इन्होंने तो फ्रॉड किया या इन्होंने तो ये कहा, तो हमें कितना गुस्सा आएगा कि मेरे ऊपर तुम बातें झूठी, मैंने तो ऐसा कहा भी नहीं, ऐसा किया भी नहीं, और तुमने मेरे ऊपर झूठी बात मनसूब कर दी। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो सबसे आला है उसके ऊपर कोई झूठ बांध दे और कहे अल्लाह ने नहीं ये कहा है, लोग डरते नहीं है जिस वक्त हदीसें घड़ रहे होते, चाहे वो कितनी नेकी फैलाना चाहते हो लेकिन हदीस घड़ लेना ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ लगाना है, और आपने फरमाया ऐसे इंसान का ठिकाना भी जहन्नुम है, और अल्लाह की आयात को झुठलाना ये भी इतना बड़ा जुल्म है, ये जुल्म है। अब तुम मत फतवे दे, मत खुद से बातें अल्लाह के ऊपर लगाएं, अल्लाह फलां को जन्नत में भेजेगा, हाँ फलां को तो अल्लाह ने माफ़ी कर देना, क्यों हम क्या जाने, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, अच्छा उसका क्या फिर होगा, उसको अल्लाह माफ करेगा या नहीं? वो मुझे क्या पता उसको माफ करेगा या नहीं, मैं अल्लाह के ऊपर कैसे कोई बात लगा सकती कि वो उसको अल्लाह बख्शेगा या उसको सजा देगा या उसको क्या करेगा। तो ऐसी चीजों में केयरफुल रहना चाहिए। उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब। अब यही जो पहले भी बात गुजरी है ना कि दुनिया में तो अल्लाह ने सबको देता है, ऐसे लोगों को भी जो ऐसे जालिम हैं जो अल्लाह की आयात का इनकार करते रहते हैं, उनको भी यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, वो भी पालेगा उनका, वो भी पहुंचेगा उसको उनको, या पालेंगे वो उन अपना हिस्सा मिनल किताब, किताब में से। किताब क्या है? किताब है जो अल्लाह ताला ने उनके लिए तकदीर में लिख दिया, वो किताब है। यानी जितना उनकी किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया वो उनको मिल के रहना है, जो अल्लाह ने उनके मुकद्दर में रिज़्क दिखा, उम्र लिख दी, कोई और औलाद लिख दी, कोई भी चीजें लिख दी, वो देख लेना आप अल्लाह के दुश्मन हैं, उनको भी मिल रही है ना ये चीजें, लेकिन ये मताउन कलील है। तो अल्लाह ने उनके लिए तकदीर में लिख लिया, वो उनको मिल के रहना। इससे हम कभी धोखा ना खाएं, ला यगुरुन्नका तकल्लुबल्लदीन कफरू फिल बिलाद मताउन कलील, तुम्हें धोखे में ना डाल दे ये इन काफरों का चलना फिरना जमीन के ऊपर कि तो बड़े सक्सेसफुल हैं, इनको तो सारा कुछ ही मिल गया। हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ्फौनहुम, यहां तक के फिर जब इनकी शामत आनी है ना, जब आएंगे हमारे फरिश्ते जो फौत करेंगे इनको, जब इनके पास आएंगे ना तो वो फरिश्ते आके इनको कहेंगे अइना मा कुंतुम तदउना मिन दुनिल्लाह, वो कहाँ हैं जिनको तुम पुकारते थे अल्लाह के सिवा, जिनको तुम कहते थे ये हमारी मदद को आएंगे, हमारे मुश्किल कुशा, हमारे हाजत रवा, ये हमारी बिगड़ी बनाने वाले, ये हमारे पीर, ये हमारे मुर्शद, ये हमारे फलां, जिनके आगे तुम हाथ बांध बांध के खड़े होते थे, जिनसे तुम्हें उम्मीदें थी कि ये तो हमारे सारे काम यही बनाते हैं जी, बेटा भी इन्होंने ही दिया है और सब कुछ, वो कहाँ है ना जिनको तुम पुकारते थे अल्लाह के सिवा, भाग भाग के जिनकी तरफ जाते थे कि ये हमें बचाएंगे, ये हमारी इस वक्त जो भी हाजत है ये पूरी करेंगे। बाज लोगों का ये होता है उनको जो मुश्किल होती है फौरन भागते हैं, फलानी जगह जाए उस जगह पे जाके हम देख देंगे, कभी अजमेर जा रहे हैं, कभी कोई किसी और जगह जा रहे हैं, यहाँ पे हमारी बिगड़ी बनेगी। वो कहाँ हैं फिर जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते थे, अब वो कहाँ नजर आएंगे उस वक्त? अब मौत के फरिश्ते आ गए हैं तो अब ये क्या आगे से जवाब देते हैं, दल्लू अन्ना, वो तो हमसे गुम हो गए, वो तो नहीं मिल रहे हमें, वो तो गायब हो गए, अब तो अकेले हैं ना, अब किसको पुकारे हैं? وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين, और वो गवाही देंगे अपने नफ्सों के खिलाफ, यानी अपने खिलाफ ही गवाही देंगे कि वो काफिर थे। वो खुद कहेंगे कि हमने कसूर किया। शुरू में याद है इसी सूरा के शुरू के अंदर आया था ना कि जब लोगों पे अजाब भी आता है तो उस वक्त उनकी एक ही पुकार होती है, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, फिर चीखते फिरते हैं, हाय हमने ही जुल्म कर दिया, हाय हमने अपना बेड़ा गर्क खुद किया। तो उस वक्त वो भी कहेंगे, कहते हैं ऐसे लोग जो जिनके जो अल्लाह के सिवा औरों को पुकारते हैं कि अब नहीं वो सहारे कहीं रहे, अब हम मानते हैं हमने कसूर किया। और फिर अल्लाह ताला सीन दिखाते हैं कयामत का, जिस वक्त ऐसे लोग खड़े होंगे आग के पास, قَالَدْ خُلُوفِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ, कहा जाएगा داخل ہو جاؤ, किसके किधर दाखिल हो जाओ, फी उमा ग्रोहों में, उन ग्रोहों में उन ग्रुप्स के साथ तुम भी दाखिल हो जाओ, कद खलत मैंने कबलिकुम, जो तुमसे पहले गुजरे थे, जो तुमसे पहले गुजरे थे उन्होंने भी वही काम किए, तुमने भी वही काम किए, अब उनके साथ ही तुम भी दाखिल हो जाओ। मीरल जिन्नी वल इंसी, जिन्नों में से भी हैं वो ग्रोह और इंसानों में से भी हैं, सब एक ही कम्युनिटी बन गए ना, फिर कहां दाखिल हो जाओ, फिर नार, आग में। देखें जब एक जैसे अमल करेंगे ना लोग तो फिर वो चाहे जमानी फर्क कितना भी हो, अब कौम लूत कब की गुजर चुकी, उनकी तो पता नहीं हड्डियां भी गल के सुरमा बन चुकी होंगी, लेकिन आज जो वही कौम लूत वाला अमल करेगा तो सब एक साथ ही जाएंगे, फिर ये भी तौबा किए बगैर मर गया तो वही काम उन्होंने किया, वही काम इसने किया। वो जो मुतकब्बिरीन है, अगर फिरौन तकब्बुर करने वाला था तो आज भी तकब्बुर करने वाले कोई कम नहीं है, ऐसे मुतकब्बिरीन आज भी मौजूद हैं, उनको फिरौन जितनी बादशाह शायद ना मिली हो, लेकिन वो कई हैं जो अपने घर में ही फिरौन बन के बैठे हैं। कहीं जो है जो अपनी जो उनके दफ्तर हैं जो उनके पास ओहदे हैं उसके पर फिरौन बन के बैठे हुए। तो वो ऐसे लोग जिनके एक जैसे काम थे ना, उन सारों को कहा जाएगा अच्छा चलो ठीक है, अब आप दाखिल हो जाओ अब ग्रोहों में जो तुमसे पहले गुजरे थे, जिन्नों में से भी इंसानों, क्योंकि जिन्नों को भी जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा। कुल्लमा दखलत उम्मत लानत उख्तहा, जब भी दाखिल होगी ना कोई जमात तो अपनी बहन को लानत करेगी। अपनी बहन का मतलब क्या, जैसे कहते हैं ना ये इसकी सिस्टर कंपनी है, सिस्टर कंपनी का मतलब क्या, यानी उस वो सेम ही है, ये एक जैसे ही काम करती हैं। तो उख्तहा का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी एक उम्मत और दूसरी उम्मत जो इनके जैसी थी, जो इनके जैसे काम करती थी। तो जब कभी दाखिल होगी एक जमात तो वो लानत करेगी अपनी बहन को। अपनी बहन को मतलब क्या, जो इसके जैसे काम करने वाली थी उसके ऊपर लानत करेगी कि तुम पे अल्लाह की लानत हो। क्यों क्यों उनको क्यों लानत करेगी वो, इसलिए कि तुमने हमें कहा था ना ये करने को, तुम कहते थे ऐसे करो, तुमसे मुतासिर होके किया, तुम्हें हम देखा करते थे, तुम्हें हम फॉलो करते थे, चाहे इंस्टाग्राम पे करते थे, अब वो तो आपको जानते भी नहीं थे कि भाई कौन है, लेकिन देखें फॉलोइंग हर तरह की होती है, नेकी में भी फॉलोअर्स होते हैं जो उनको नेकी की तरफ ले जाते हैं, बुराई के भी फॉलोअर्स होते हैं, बेहयाई के भी फॉलोअर्स होते हैं। आज कितनी फॉलोइंग है ना, आज आज जिन जिनके फैंस हैं फेसबुक पे, जिनके फैंस हैं दूसरी जगह पे, उनको तो शायद अपने पूरे फैंस का भी नहीं पता होगा, लेकिन ये फैंस उनकी हर चीज को नोट करते हैं। जब अगर वो बुराई के अंदर उनको फॉलो कर रहे होंगे तो कयामत के दिन फिर लानत भेजेंगे उनके ऊपर कि बदबख्तो तुम्हारी वजह से हम भी बर्बाद हो गए, इनको देख देख के ये भी पीछे चले हुए थे। एक वक्त तो वो होता था कि लोगों के कोई बड़े होते थे तो उनके जो जो उनके फॉलोअर होते थे उनके सामने होते थे, आज तो वर्चुअल वर्ल्ड है, कहाँ फॉलोअर बैठे हुए हैं, कहाँ आसिर होते हैं, कहाँ वो बैठे हुए, वो उनको दूर बैठे हुए भी फॉलो कर रहे हैं और उनके कहे को के ऊपर चल रहे हैं। तो आज तो बड़ी डिफरेंट तरह की फॉलोइंग है। तो जब वो जहन्नुम के अंदर ऐसे लोग सारे जमा होंगे तो वो उनको, जब उनके साथ दाखिल होंगे तो उनको लानत करेंगे। हत्ता इज्जतदार कूफी हा जमियान, हत्ता के जब सारे ग्रोह एक जगह जमा हो जाएंगे ना, यानी एक ग्रोह को अल्लाह ताला जहन्नुम डालेगा, फिर वो दूसरा आएगा तो इन पे लानत करेगा। अब देखें लानत को सुनना भी ना इंसान के लिए मुश्किल होता है, कोई लानत कर रहा हो तो कितना दिल पे भारी होता है, और हो सकता है कि इनकी औलादें ही हों। जब कोई बड़ों ने अगर शिर्क किया, कुफर किया, अब औलाद उसको देख के, मां बाप को देख के वो भी कुफर पे लग गई तो वो आके उनको लानत करेंगे आपकी वजह से। हत्ता कि जब वो जमा हो जाएंगे ना वहां पे तो फिर क्या होगा, कालत उखराहुम लिउलाहुम, तो वो बाद वाले जो होंगे, जो न्यू एंट्री होगी, वो पिछले वालों को, जो पिछले वाले यानी उला जो पहले आए हुए हैं, जो पहले जहन्नुम के अंदर पड़े हुए हैं, जो इनके चाहे सरदार हैं, चाहे इनके लीडर हैं, चाहे आबाओ अजदाद में से कोई थे, चाहे ये जो भी थे जिनको भी इन्होंने फॉलो करके यहां तक पहुंचे हैं, तो ये बाद वाले, ये नए आने वाले या फॉलोअर्स या फैंस या उलादें, ये अब कहेंगी रब्बाना ऐ हमारे रब, हा उलाय दल्लूना, ये हैं जिन्होंने हमें भटकाया, इन्होंने हमें गुमराह किया, हम तो ये ना हमें कहते तो हम तो शायद कभी भी ना ये इस रास्ते पे आते। तो आतिहिम अदाबन दिअफ़ मिनन्नार, अल्लाह इनको तो डबल अजाब दे, इनको डबल आग में डाल, आग में से दुगना अजाब इनको दे। देखें दुनिया में भी किसी को किसी की वजह से नुकसान हो जाए ना तो वो कितना उसके ऊपर बरसता है, कहता है अल्लाह करे अब तुम्हारे ऊपर ये हो, अल्लाह करे तुम इसके अंदर से गुजरो, तुमने मेरा बिगाड़ा तो तुम्हें ऐसा मिले। अब वहां पे सोचें कि कितना बड़ा नुकसान हो गया, ये तो कोई छोटा नुकसान नहीं है, ये कोई कारोबार का नुकसान नहीं है, ये कोई पढ़ाई का नुकसान नहीं है, ये कोई कहीं गलत जगह रिश्ता नहीं हो गया, हमें कोई गलत जगह रिश्ता भी कोई करा देना सारी जिंदगी उसको कोसते रहते हैं फलाने ने कराया था ना? तो अब ये तो छोटी छोटी जिंदगी की बातें, हालांकि उसका चाहे कसूर भी ना हो उस बेचारे को क्या पता, लेकिन वहां पहुंच के सारी जिंदगी को जब आग लगा दी, इनफिनिट लाइफ को आग लगा दी, तो कोई किसी को छोड़ेगा? अब ये जा रहे हैं तो चाहे वो कोई भी है, हो सकता है किसी के टीचर्स हो, हो सकता है कोई एलीट क्लास का कोई हीरो हीरोइन हो सकता है कोई फिलोसोफर हो। आजकल कई यूनिवर्सिटीज के ऐसे पता चले हैं, ऐसे प्रोफेसर्स हैं, बच्चों को किस तरफ लगा देते हैं, उनको एथिज्म की तरफ ले जाते हैं। तो वो और इंटरनेट पे कितने बैठे हुए, कितने वाकयात हम सुनते हैं कि बस इंटरनेट पे बच्चे बैठे और उसके बाद उन्होंने पता नहीं जिन जो भी लोग इस एजेंडे के साथ, शैतान के एजेंडे के साथ बैठे हुए, उन्होंने बहकाया और बच्चे उस तरफ लग गए। तो अब वहां जाके कोई ये नहीं कह सकेगा हाय अल्लाह इसने मुझे कहा था तो इसको अजाब दे, मेरा क्या कसूर है। नहीं, अब तुम भी इसके पीछे चले गए तो तुम्हारा भी जुर्म उतना ही हो गया। अब कहेंगे अल्लाह इनको डबल दे। अब उनको कितना गुस्सा होगा उनके ऊपर। قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون, अल्लाह ताला फरमाएगा सबके लिए दुगना है, फिक्र ना करो लेकिन तुम्हें नहीं पता, तुम जानते नहीं हो। यानी दोनों का ही दुगना हो गया ना, इन उनका तो दुगना था ही क्योंकि उन्होंने बहकाया, तुम्हारा भी दुगना है, तुम्हारे तुम्हें देख के भी कई लोग बहके होंगे, फिर तुमने भी उनके अजाब में इजाफा किया, तुम्हारे भी आगे पैरोकार कोई होंगे, तुम्हें भी कोई देखने वाले होंगे। तो उनके गुनाह को लेके वहीं तक थोड़ी रहते हैं, वो आगे से आगे चलाते हैं। तो एक को डबल है तो दूसरे को भी डबल है। और फिर वैसे भी वहां पे जहन्नुम का जो अजाब होगा ना, हर कोई कहेगा कि मेरे से ज्यादा तो अजाब में कोई है ही नहीं, उसको लगेगा मेरे जितने अजाब में कोई नहीं है, चाहे उसको सबसे हल्के अजाब में क्यों ना हो। तो उनको तो मिल ही रहा है क्योंकि उन्होंने दूसरों को भी बहकाया। आज ये जितने इंटरनेट पे ऐसे फितने बैठे हुए हैं, कई क्रिश्चियन ऐसे बैठे हुए हैं, कई और मजाहिब वाले ऐसे बैठे हुए हैं, एथीस्ट ऐसे बैठे हुए हैं, वो अपनी अपनी दावा करके क्रिश्चियनिटी में लेके जा रहे हैं कई बच्चों को, कईयों को एथीस्ट बना रहे हैं। तो ये सारे खुद तो गुमराह हुए हुए हैं, दूसरों को भी कर रहे हैं। वकालत उलाहुम लिखराहुम, अब ये भी बोलेंगे ये जो माँ बाप हैं या ये जो उस्ताद हैं या ये जो लीडर हैं, ये भी अब बोलेंगे एकदम जो पहले से आग में पड़े हुए ली उखरा हूं, ये नई एंट्री वालों को क्या कहेंगे। फमा काना लकुम अलैना मिन फदल, तुम्हें हमारे पर क्या बरतरी है, तुम कौन से इतने दूध दुले हो, तुम कौन से बड़े अच्छे हो, तुम्हारे तुम्हें क्या फजीलत है हमारे पर कि तुम्हें तो डबल ना दिया जाए हमें डबल दिया जाए। फजू को लगा भाभी मां कुंदुम तकसीब, तुम भी चखो ना अजाब जो तुमने किया, तुम भी तो कोई कम नहीं थे, तुम भी हमारे पीछे चल पड़े, जो हमने थोड़ी तुम्हें कहा था, पकड़ के तो नहीं लाए, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता, तो कोई पकड़ के नहीं किसी को ला सकता, कोई गन पॉइंट पे किसी ने से नहीं कुछ करा सकता, तो तुम खुद सोच लेते तुम क्यों हमारे पीछे लगे। अब ये देख लें कि जहन्नुम का माहौल क्या है, जहां पे लानत मलामत एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां मुसलसल जारी हैं, झगड़े, और फिर अंदर आग लगी हुई है बाहर भी आग है, अंदर गुस्सा है अंदर जलन है, फिर भी इंसान इससे छुटकारा नहीं पा सकेगा ये इल्जाम लगा के भी। यहां पे शायद दुनिया में इंसान दूसरों पे इल्जाम थोप के और खुद सोच ले कि मैं बरी जिम्मा हो गया हूं, और शायद चार लोग उसकी मान ही लें, लेकिन वहां पे कोई नहीं मानी जाएगी। जितना मर्जी भड़केंगे, जितना मर्जी इल्जाम देंगे, जितना मर्जी कहेंगे इन्होंने कराया, लेकिन इसकी वजह से खुद छुटकारा नहीं पा सकेंगे। तो ये कुछ पर्पस सर्व नहीं होता इससे कि किसी और को कह दिया कि इसने कराया, इसने मेरे से कराया, इसने मुझे इसमें डाला, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। इसका मतलब है कि इंसान को खुद ही होश के साथ जिंदगी गुजारनी है। वो ये कयामत के दिन नहीं कह सकेगा कि मैं क्या करूं, मैं तो, या कई लोग दुनिया में कहते हैं मैं तो कह दूंगी वहां पे इसने मेरे से कराया था। तो ये जो आप आज सोच रही ना मैं तो कह दूंगी इसने मेरे से करा था, इसने वहां पे काम नहीं आना। खुद आज सही चले, किसी के कहने पे ना चले। अगर वालदेन भी गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं उनकी भी नहीं सुननी, और तो दूर की बात है किसी और की सुनना, तो दोस्त अहबाब और टीचर्स और फलां ये जो आपके ये बने में सेलिब्रिटीज, ये तो दूर की बात है। वालदेन तक अगर अल्लाह से दूर करने की अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे उनका भी नहीं मानना, किसी ने काम नहीं आना वहां पे। ये देख लें उनकी गुफ्तगू आपस में, कौन है जो मान के कह रहा है कि ना हाँ अल्लाह हमें ही अजाब देना चाहिए, इसको तो मिलना ही नहीं चाहिए, ये तो बेचारा था। नहीं, वो कहते तुम बड़े कोई अच्छे हो, तुम भी भुगतो। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, अल्लाह ताला ऐसे अंजाम से किसी को ना दो चार करे, अल्लाह ताला हमारी नस्लों तक को बचा के रखना इससे, अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमा दे। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون